अब ये बीच में तस्किया वाली आयत लाकर जिससे इंसान अपना मुहासबा करने लगे, दोबारा बात चलती है कुछ मसाइल की तरफ जो किबले के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। वमिन हैसु खरजता फवल्ली वजहक शत्रुल मस्जिदिल हराम, और जहाँ कहीं से आप निकलें तो बस अपने चेहरे को मस्जिद हराम की तरफ फेर लें। व इन्नहु लल हक्कु मिर रब्बिक, और ये बेशक आपके रब की तरफ से हक है। क्या ये हुक्म किबले की तब्दीली का हुक्म और खाना काबा यानी बैतुल्लाह की तरफ आपका मुंह करवाया जाना ये हक है, ये अल्लाह का फैसला है। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और अल्लाह ताला गाफिल नहीं उससे जो तुम करते हो। यहाँ देखिए 3 दफ़ा अगली आयतों में ये लफ्ज़ आएंगे। मैं इन 3 आयतों को इकट्ठा पढ़ूंगी, फिर आपके साथ इनका खुलासा करूंगी। अभी तक इस आयत में क्या कहा? जहाँ से आप निकलें, खरजता वाहिद का सीगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि जहाँ से भी आप निकलें यानी बाहर जाएं, खाना काबा में हों, मस्जिद हराम की तरफ हों, जहाँ से भी हों तो आप निकल जाइए। बाहर जाएं तो क्या करें? अपने चेहरे को शत्रुल मस्जिदिल हराम करें। यहाँ लफ्ज़ देखिए शत्र आ गया दोबारा, और शत्र जैसे कि हम देख चुके आधा हिस्सा भी इसका मतलब होता है और जानिब भी है। यहाँ शत्रुल मस्जिदिल हराम कहा गया कि मस्जिद हराम की तरफ अपना मुंह कर लीजिए। ये हुक्म कब के लिए है? जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में मौजूद हैं, बैतुल्ला में मौजूद हैं, काबा सामने दिख रहा है। तो मुराद क्या है कि जब कोई शख्स खाना काबा की हदूद के अंदर हो तो वहाँ उसको अपना रुख खाना काबा जो काले रंग का रूम है उसकी तरफ करना होगा। मेरी बात को सुनते हो क्या? तसव्वुर में लाएं जरा पूरे मस्जिद हराम को, वहाँ जाके भी सब काले कमरे की तरफ मुख करते हैं ना। तो यहाँ बैतुल हराम की बात की, मस्जिद हराम की बात की गई कि जब आप वहाँ मौजूद हैं, सामने आपको हरम दिख रहा है, तो वहाँ जाके भी आपने रुख उधर ही करना है। ये ना कहें कि वहाँ जाके भी चले अब इस हद के अंदर तो आ ही गए हैं, और चूंकि दूर से हमने सुना था कि शतर का मतलब है थोड़ा बहुत इधर उधर भी कर लें, तो यहाँ भी हम मुंह इधर कर सकते हैं। नहीं, वहाँ जाके बिल्कुल आपका फोकल पॉइंट जो है वो बैतुल्ला ही होना चाहिए, और ये हुक्म अल्लाह की तरफ से है। व मिन हैसु खरजता, और जहाँ से तू निकले, फवल्ली वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम, दोबारा वही बात, अपने चेहरे को मस्जिद हराम की तरफ कर लीजिए। वह हैसु मा कुंतुम, और जहाँ कहीं भी तुम हो। यहाँ से देखिए जमा का सीगा शुरू हो गया, उम्मत को कहा जा रहा है कि जहाँ कहीं भी तुम हो, फवल्लू तो तुम सारे के सारे फेर लो, वुजूहकुम शत्रहू, अपने चेहरों को उसी तरफ। हु से मुराद क्या है यहाँ? अल मस्जिदिल हराम। ऐसा क्यों किया जाए? लियल्ला यकून लिन्नासि अलैकुम हुज्जतन, ताकि लोगों को तुम्हारे खिलाफ कोई हुज्जत ना मिले। ये कौन से लोग थे? यहूद थे। क्या हुज्जत ना मिले? क्योंकि अहले किताब जो थे वो बदगुमानियां फैलाने का उनको कोई मौका ना मिल जाए कि तौरात में तो ये लिखा था कि आखिरी नबी का किबला खाना काबा होगा और इनके किबले तो कोई और है। ये एक हिकमत बताएगी किबले की तब्दीली की कि यहूद की इस हुज्जत को तमाम करने के लिए अल्लाह ताला ने बैतुल्ला को किबला बनाया। क्योंकि पहली बात यह है कि उनकी किताबों में ये मौजूद था कि आखिरी नबी का किबला खाना काबा होगा, और अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये किबला इख्तियार ना करते तो उलमाए यहूद मुसलमानों पर हुज्जत कायम करते। तो गोया कि ये उनके ऊपर इतमाम हुज्जत भी हो रहा है और कतअ उज़र भी हो रहा है। दूसरी एक और वजह भी थी कि यहूद ये भी ताने देते थे कि देखो आज इन्होंने हमारे किबले को अपना लिया तो कल हमारा दीन भी अपना लेंगे। यानी जिन दिनों में मुसलमान बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे थे उन दिनों में भी ये खुश नहीं थे। बढ़ोतरी का एहसास होता या खुशी महसूस करते या अपने आप को बड़ा समझते कि देखा आ गए ना हमारे किबले पे, कल देखना दीन पे भी आ जाएंगे। अच्छा, अब क्या होता कि जब मुसलमान दूसरी तरफ की तो कहा ये क्या है, इनका तो किबला ही बदलता जा रहा है। हालांकि यहाँ आप देखिए कि एक बड़ा बारीक सा नुक्ता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में जब गए 13 साल आपने बैतुल्लाह ही की तरफ मुकर के नमाज पढ़ी। क्यों? क्योंकि मक्का के मुकामी लोग जो थे वो बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे, और ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हज़रत इब्राहीम और इस्माइल की निस्बत से उधर ही मुंह करके नमाज पढ़ना चाहते थे। इसमें माइल किया जा रहा था उनको कि देखो हमको मुख्तलिफ लोग नहीं है। इससे एक बहुत प्यारा मसला निकलता है कि इंसान जहाँ भी अल्लाह का पैगाम पहुँचाए तो जो लोग वहाँ मौजूद हैं उनको अपने से दूर ना करे, एकदम ऐसा ना रवैया कर दे कि हम तुमसे को बहुत मुख्तलिफ है और बड़ी मुख्तलिफ चीज़ लेके आए हैं, नहीं वैसे बनो। अब मदीना में आए, यहूद मौजूद थे, एक सूरत क्या थी, आते ही मदीना में खाना काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी जाती। तो वो जो एक चांस था ना यहूद को माइल करने का, वो ख़त्म हो जाता। ये जो 16-17 महीने मदीना में आने के बाद बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी गई, असल में यहूद को मानूस किया जा रहा था, तालीफ़ कल्ब हो रही थी, उनको एहसास दिलाया जा रहा था कि आओ देखो हम तुम एक ही तरफ चलते हैं, यानी थोड़ा सा उनको यूज़ टू किया जा रहा था। लेकिन जब ये देखा कि वो तो इसके बावजूद भी नहीं आए, और कुछ लोगों की तरफ आप बहुत हाथ बढ़ाते हैं प्यार से, मोहब्बत से, अच्छे तरीके से, तोहफे तहाइफ से, दावत से, कि शायद इनका दिल आ जाए, शायद आ जाए, लेकिन एक ख़ास हद होती है, जब नहीं होता तो कहा लिया ला यकून अलिन्नासि अलैकुम हुज्जा, अब लोगों को तुम्हारे खिलाफ कोई हुज्जत ना मिले, इल्लल्लज़ीन ज़लमू मिनहुम, हाँ मगर जो हैं ही जालिम, मुराद वही है लोग कि जो किसी हाल में खुश नहीं रहते। कभी ज़िंदगी में आपने ऐसे लोगों के साथ मामला आपको पेश आया होगा कि जिनको आप जितना मर्जी कोशिश करें, उनकी जितनी मर्जी बात मान ले, वो फिर भी नहीं आपकी मानते, क्योंकि उनका मामला वो बात नहीं होती, पीछे अंदर कोई और जज्बा छुपा होता है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि फला तख्शौहुम वख्शौनी, उनसे मत डरो मुझसे डरो, यानी ऐसे लोगों की बातों में ना आओ, क्योंकि बाज़ दफ़ा लोगों को अपने इर्द गिर्द वालों का बड़ा खौफ होता है, साफ समझ आता है कि अल्लाह का हुक्म क्या है, लेकिन क्या करें, बिरादरी क्या कहेगी, ख़ानदान कहेगा अब इनके किबले बदल गए, इनकी शादियों के किबले बदल गए, इनकी रस्म व रिवाज के किबले बदल गए, तो ये तो पता नहीं अब कुछ और ही हो गए। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनसे मत डरो मुझसे डरो। इससे क्या पता चलता है कि लोगों का वो डर जो अल्लाह की इताअत का शौक छीन ले, वो जायज़ नहीं है। मुझसे डरो, मेरे सामने तुमने आना है, तुम लोगों से डर के मुझे नाराज़ करते हो। क्या ये आयत सबके ऊपर हुज्जत नहीं बन रही, जो आज दीन के बड़े बड़े हुक्म छोड़ देते हैं सिर्फ अपने इर्द गिर्द वालों को खुश करने के लिए, अपने हाल हुलिये को बदल देते हैं इसलिए कि हमारे इर्द गिर्द वाले लोग खुश हों। अपनों में बैठेंगे तो फिर भी इस्लामिक गेटअप होगा, और ज़रा किसी ऐसे शख्स के पास अपॉइंटमेंट बन जाए कि जहाँ ज़रा दूसरी तरफ की बात हो, तो फौरन इंसान अपना हुलिया भी बदलने लगता है कि नहीं अब चूंकि वहाँ जाना है तो अब इस हुलिये में तो मैं नहीं जा सकता। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम सोचो तुम्हें अल्लाह ने क्या दिया, वलियुतिम्मा नेमती अलैकुम वलअल्लकुम तहतदून, और ताकि मैं तुम पर अपनी नेमत को पूरा करूँ और ताकि तुम सीधी राह पाओ। मुसलमानों को इस्लाम दिया, अल्लाह ने अपना नबी दिया, और अब किबला भी दे दिया, अल्लाह ने इतमाम हुज्जत पूरी कर दी, इतमाम हुज्जत कर दी, अल्लाह के नबी की पैदाइश की बुनियाद पर एक नई उम्मत की तश्कील दी, आपको लोगों का इमाम बना दिया, अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वरासत आपके हाथों में दी जा रही है, लअल्लकुम तहतदून, अब तो सीधे रास्तों पे आ जाओ। अल्लाह ने तुम्हारी हिदायत के लिए कितने काम किए, कितना मामला किया। इस एक आयत के अंदर 3 दफ़ा ये हुक्म आया, फवल्ली वजह का शतर अल मस्जिदिल हराम, फिर हैसु मा कुंतुम फवल्लु वुजूहकुम। तो ये क्यों है, आप अपने लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि इतनी दफ़ा हम बार बार क्यों पढ़ रहे हैं चेहरा बदलो चेहरा बदलो। तो पहली इसकी वजह तो ये है कि ये पहला नसख था, पीछे हम पढ़ चुके हैं मा ननसख मिन आयतिन और नुनसिहा में, कि हम कोई भी हुक्म मनसूख करते हैं तो उसकी जगह दूसरा ले आते हैं। तो चूँकि मुसलमानों के लिए अमली कामों में ये पहला नसख का हुक्म था, और जब एक चीज़ इतनी दिनों से होती आती है और आप उसको मनसूख करके एक नया कानून देते हैं, तो आवाज़ें तो उठती हैं। एक चीज़ चलती चलती, आप गाड़ी भी चलाते चलाते जब टर्न लेते हैं ना, तो उस वक्त अंदर बैठे कभी कभी लोग हिल जाते हैं। ये एक नया तरीका था, पहला नसख था, इससे बहुत प्रोपेगंडा उठने का डर था। फिर दूसरी वजह यह भी थी कि इसके अंदर शोर गुल बहुत उठा, जितना ज़्यादा प्रोपेगंडा हुआ मुसलमानों के खिलाफ, तो उसको दबाने के लिए उतनी ही ज़्यादा अल्लाह ताला की तरफ से ताकीद होती आ रही है। फिर एक और भी वजह यह है कि मुसलमानों की इबादत में से बड़ी अहम इबादत के अंदर एक तब्दीली आई थी। नमाज दिन में 5 बार पढ़ी जाती है। बस हम देखिए कि अगर हज के हुक्म में कोई तब्दीली आए तो साल में एक ही दफ़ा उसका मौका आना था ना, और जब आता तब शोर उठता। लेकिन ये एक ऐसी तब्दीली थी कि जो ना सिर्फ ये कि इबादत के दौरान हुई, बल्कि हर थोड़े घंटे बाद फिर वही याद आती। मसलन किबले की बात थी, लोगों ने एक नमाज पढ़ ली, अगर ये साल में एक दफ़ा का काम होता तो मसला दब जाता। अच्छा, अगले साल फिर उठेगा। जैसे माशाल्लाह हमारे यहाँ भी हर साल कुछ मसले उठते हैं। चांद देखेंगे कि सऊदीया के साथ ईद करेंगे कि अपने मुल्क के साथ करेंगे, वो हर साल उठता है। फिर 1 2 4 दिन खूब बोल बाल के सब बंद हो जाते हैं, अगले साल फिर शुरू हो जाता है। हाँ, लेकिन मसला क्या था कि एक नमाज हुई, चंद घंटे बाद फिर दूसरी नमाज है। वो जख्म बार बार खुरचने वाली कैफियत लग रही है कि भाई ये क्या हो रहा है। जितनी दफ़ा नमाज के लिए आएंगे फिर उनको वो पुराना किबला याद आएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही होता है कि जैसे हम अल्लाह के दीन की तरफ आते हैं ना, तो हम अपनी कुछ आदत छोड़ना चाहते हैं। कुछ आदत ऐसी होती हैं कि जो कभी कभी हम काम करते थे, हम कहते हैं कि चलो छोड़ देंगे अभी, अब बस बहुत हो गया, कर लिया। लेकिन कभी हमें अपनी वो आदत छोड़नी पड़े जो बार बार हम करते हैं, दिन में एक बार, या मिसाल है कि आप कोई नेकी का काम करें, नियत करें और साथ ही वो मौका भी आ जाए। बस में बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो वो कहती हैं कि हाँ, हम अपने आप को छुपाएंगे, हम अच्छा हिजाब करेंगे, ज़रा हमारी शादी हो ले, क्योंकि खामखा फिर शादी के वक़्त सारी फिर मुश्किलात होंगी। बस कहते हैं अच्छा, हम बेकार किस्म की रसूमात उनको छोड़ देंगे, ज़रा हमारे सारे बच्चों की शादियां हो जाएं। क्योंकि वो जब मौके आते हैं ना, तो उस वक़्त इंसान को मुश्किल होता है। तो जितनी तकरार थी उतना ही अल्लाह ताला इस बात को बार बार ला रहे हैं। और एक और भी इसकी वजह है, और वो क्या कि ये कतई और आखिरी हुक्म था। अब इसके बाद इसमें तब्दीली नहीं हो सकती और ना होनी थी। ये तो एक इसकी हिकमत है। अब इसमें अहकामात क्या हैं? पहली मरतबा जो हुक्म आया ना, फवल्ली वच्छा का शत्रुल मस्जिदिल हरामी व हई सुमा कुन तुम फवल्लु वजूह हकुम, ये हुक्म है हालत हजर का। जब नबी सल्लम अपनी जगह पे मुकीम हैं तो आप मस्जिद हराम की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ें। और इसी बात का हुक्म उम्मत को दे दिया गया। ठीक है, हई सुमा कुन तुम का मफहूम क्या है कि अपने वतन में हो, अपने शहर में हो, पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, अमेरिका में हो, जहां भी होंगे किबले की तरफ ही मुंह करना होगा। यानी ये हुक्म सिर्फ मस्जिद नबवी के अंदर पढ़ी जाने वाली नमाजों के लिए नहीं, बल्कि बाकियों के लिए भी है। फिर देखिए कि जो दूसरी दफ़ा लफ्ज़ आया ना, मिन हैसु खरजता, इससे पता चलता है कि ये हुक्म वतन से निकलने और सफ़र की हालत के लिए है। क्योंकि सफ़र के हालात भी मुख्तलिफ होते हैं, कभी आप एक जगह रहते हैं फिर दूसरी जगह चले जाते हैं, कभी सफ़र रुक जाता है, कहीं चल पड़ता है। तो दूसरा हुक्म जो था वो सफ़र की हालत में था। तीसरी दफ़ा जो लफ्ज़ आया है सुमा कुन तुम, तो बता दिया कि सफ़र की कोई भी हालत हो, हर हाल में किबले की तरफ ही मुंह किया जाएगा। दोहराने वाली बात कर लें कि मुख्तलिफ हुक्मों में खुलासा क्या है, कोई हरम के अंदर मौजूद है तो भी उसका रुख खाना काबा की तरफ होगा। दोनों का फ़र्क पता है आपको? खाना काबा क्या है? वो काले कपड़े वाला कमरा। और हरम क्या है? मस्जिद हराम जो उसके इर्द गिर्द है। पहली सूरत क्या है? कोई मस्जिद हराम के अंदर मौजूद है, हरम में है, तो भी रुख किबले की तरफ करेगा, खाना काबा की तरफ। दूसरा हुक्म क्या है कि कोई मक्का में है, इर्द गिर्द रहने वाले लोग जो हैं मक्का वाले, वो भी उधर ही मुँह करेंगे। और तीसरा हुक्म यह है कि कोई सारी दुनिया में जहाँ भी है, हालत सफ़र में है या हजर में है, मुँह जो है वो उधर ही करेगा। बस फिक्र ये करो कि अल्लाह ताला तुम्हारी नेकियों को कबूल कर ले। तो अब यहाँ देखिए कि कितना खोल खोल के इन बातों को बयान किया। अब यहाँ से थोड़ी सी बातें किबले के तायुन की भी आती हैं, गो के ये बातें सारी इंशाअल्लाह ताला हम तफहीमुस सुन्ना सीरीज में जो नमाज का मौजू है उसमें किबले के बाब में करेंगे, लेकिन ज़ाहिर है कि तफसीर के दौरान भी जो बात हमारे सामने आती है उसको देखना चाहिए। पहली बात यह है कि नमाज के लिए किबला फ़र्ज़ है। खुद ना मिल जाए तो पता करना चाहिए कि क्या है। अव्वल अव्वल वक्त में लोगों के पास ना तो कोई कंपस थे, ना कोई उनके पास हिसाब किताब रखने की चीज़ें थी, तो किस तरीके से किबले तय हुए, इसका एक बड़ा ही प्यारा मैंने पढ़ा एनालिसिस, वो आपके साथ शेयर करूंगी कि नबी सल्लम की वफ़ात के बाद सहाबाए कराम जहाँ भी निकल सकते थे निकल गए तबलीग की खातिर, ताकि अल्लाह के नबी का पैगाम सारी दुनिया तक पहुँचाएँ। वो इलाके मुसलमान होते गए, जहाँ इलाका मुसलमान होता था तो वहाँ भी सबसे पहला काम मस्जिद ही बनती थी, फिर मस्जिद बन गई, फिर दूसरी जगह चले गए, फिर तीसरी जगह चले गए। इस तरह होते होते क्या हुआ कि जहाँ जहाँ मुसलमान थे वहाँ कम अज़ कम एक आधी मस्जिद सहाबा कराम की बनाई हुई मौजूद थी। अब क्या हुआ कि उसके बाद उस शहर में जितनी भी मस्जिदें बननी होती थी वो सब का किबला कहाँ से ढूंढते थे, वो सहाबी की बनाई हुई मस्जिद के किबले के बिल्कुल फॉलो में बना लेते थे। वाजे हुआ? यानी आज के दौर में तो आसान है ना, आप माशाल्लाह कंप्यूटर से भी निकाल सकते हैं, पूरी दुनिया का उन्होंने सेंटर साबित कर दिया इस वक्त बैतुल्ला को। तो उस दौर में इस तरीके से ये सारा कुछ हुआ कि सहाबे कराम ने जो मस्जिदें बनाई थी उन्हीं मस्जिदों की बुनियाद पे किबले होते थे। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखिए कि अगली बात इसमें जो हमें समझ में आती है और वो क्या है, ये पिछले पूरे अमल में से, क्योंकि अब यहाँ बात थोड़ी सी दूसरी तरफ जा रही है तो मैं चाह रही थी कि इसके अंदर से बात पूरी करूँ, कि इससे एक और बड़ा अच्छा खूबसूरत मसला समझ आया। सहाबे कराम नमाज की हालत में थे, किबला तब्दील हुआ, इतनी ज़्यादा हरकत हुई कि पूरे का पूरा साइड बदल गई। इससे एक मसला समझ में आता है, कोई शख्स नमाज पढ़ रहा है, दूसरा नहीं पढ़ रहा और वो उसको कोई इंस्ट्रक्शन देता है, मसलन आपने नमाज शुरू की हुई थी, घर वाली आई, उन्होंने देखा आपने सही रुख पे नहीं की, तो वो अगर बोल के कह देती हैं किबला इधर नहीं इधर है, या आपको घुमा के कर देती हैं, तो ये जायज़ है। बास कहते हैं नमाज में हरकत से नमाज फासिद होती है, तो देखिए किसी दूसरे के कहने की दो ही सूरतें होती हैं, एक है कि वो आपको किसी जाती काम के लिए बुला रहा है, बातें कर रहा है आपसे, फ़ोन सुन लो, चाबियां वहां रखी हैं, और बाज़ लोग यकीनन ऐसी बातें कर रहे होते हैं, कोई नमाज पढ़ रहा है ना तो आप घर से बाहर जा रहे हैं, तो वो आप सब तो नहीं ऐसा करते, अल्लाह ताला जन्नत दे दे किसी की बात, मुझे ऐसी बात पे याद आ गई, कोई बुजुर्ग खातून थी घरों में, तो वो बेचारी नमाज पढ़ रही थी कहीं ना, तो अब लोग पढ़ते भी सहन में ही होते थे, और हमारे यहाँ यानी ये भी एक तसव्वुर है कि जहाँ सब बैठे वहीं नमाज पढ़ते हैं, तो ये मेरी मोमानी सुनाती होती है, तो उन्हीं की बात है, उन्हीं के नाते से सुना रही हूँ। तो ये जो थी वो उनकी नानी थी या कौन थी, बहरहाल तो कह रही कि वो अम्मा ने नमाज शुरू की तो बाहर गली में केलों वाला आ गया, तो वो नमाज पढ़ रही थी, अब बात कान में जा रही थी, केले लेने होंगे, तब तो ऊंची तो नहीं कह रही, तो लेकिन आहिस्ता से आवाज में कह रही है केले ले लो, तो आप ऐसा ना किया करें, कोई अगर ऐसी केलों वाली बात करेंगे तो फिर नमाज टूट जाती है, तो लेकिन ये है कोई ऐसी बात हो कि जिसकी वजह से अगले का फायदा हो तो फिर की जा सकती। फिर इससे एक और मसला साबित होता है जो आपके लिए शायद मुश्किल बात होगी, लेकिन आसान लफ्जों में बताने की कोशिश करूंगी, कि अगर एक बंदा भी किसी बात की खबर दे दे, इसको खबरे वाहद कहते हैं, इस्तलाहात हदीस, किसी ने अगर आप में से पहले से पढ़ी है या सुनी है कि हदीसें जो हम पढ़ते रहते हैं ना अब किताबु तहारा में या दूसरी किताबों में, तो ये हदीस हमारे तक नबी सल्लम से होके आती हैं, कोई ऐसी हदीस होती है जिसमें सिर्फ बीच में एक ही शख्स है, मसलन इन्नमल आमाल बिन्नियात, इस हदीस के सिर्फ एक रावी है और वो उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु है, ऐसी हदीस को खबरे वाहद कहते हैं। कुछ लोग ऐसी हदीस को नहीं मानते कि एक शख्स में हम कैसे एतबार करें, लेकिन सही हुक्म यह है कि एक बात जो अगर एक कहने वाला सच्चा शख्स है तो उसको भी मानेंगे, ये मसला उसकी दलील है। क्यों? कि एक सहाबी नबी सल्लम के साथ नमाज पढ़ के उठे और दूसरे इलाके में जा रहे थे, और उन्होंने दूसरे इलाके वालों को बस इतना ही कहा कि मैं खबर देता हूँ कि मैंने नबी सल्लम के साथ नमाज पढ़ी, लिहाजा किबला बदल गया, तो उस वक्त लोगों ने उनकी बात पे ईमान ले आए, तो खबरें वाहिद हो गई ना। इसी तरह आप देखिए कि चांद देखने की खबर की कोई एक शख्स ही शहादत देता है कि मैं गवाही देता हूँ कि मैंने चांद देखा है, तो उस वक्त भी फिर चांद को देखा जाएगा। फिर इससे एक और चीज़ भी जो मसला साबित हुआ इस पूरी बात में, और वो क्या है कि कोई ज़रूरी हरकत यानी किसी ऐसी ज़रूरत के तहत नमाज में हरकत की जाए तो उससे नमाज नहीं टूटती, हत्ता कि आपको था कि बच्चा रो रहा और माँ उसको उठा के बिठा लेती है, फिर वो चुप हो गया, फिर बिठा देती है, इससे भी नमाज नहीं टूटती। कोई इतनी बड़ी मजबूरी है कि कोई बाहर डोर पे आ गया और आपको डर है कि चला ना जाए या कुछ है, तो आप उसी किबले रुख में जाएं, डोर खोल के सीधा वापस आके अपने उसी रुख पे खा जाएं, यहाँ तक रुख्सत है। लेकिन आप सोचिए कि दीन कितना खूबसूरत है। अब इसको पूरी बात समझे बगैर अमल ना करेंगे, आप कहें कि फिक्र नहीं करें मैं बीच में ही खोल दूंगी, और एक और फितना उठ जाए कि ये तो नमाज में भी चलने फिरने की बातें कहते हैं। बात को समझने की बात है। आप इन बातों को सुनते हो कि ये सोचा करें कि हमें अल्लाह ने दीन दिया कितना प्यारा। क्या ये दीन गोशा नशीनी वाला दीन है? हर चीज़ के अंदर अल्लाह ताला ने कोई ना कोई बात हमारे फ़ायदे की रखी हुई है, और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे इन सारी चीज़ों के तस्करे के बाद अब लोगों को एक और नेमत का एहसास दिलाया जा रहा है। और वो क्या? कमा अरसलना फीकुम रसूलम मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना वयुज़क्कीकुम वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तालमून। जैसा कि हमने आपके बीच एक रसूल भेजा आप ही में से, जो पढ़ता है तुम पर हमारी आयतें और तज़किया करता है तुम्हारा और सिखाता है तुमको किताब और हिकमत, और वो तुमको वो कुछ सिखाता है जो तुम नहीं जानते। तो इस नेमत के शुक्राने के तौर पे क्या करो? फ़स्कुरूनी अस्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। पस मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। तुम मुझे याद करो, मैं तुमको याद करूँगा। और मेरा शुक्र अदा करो और मेरी नाशुक्री ना करो। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस टॉपिक का अख्तिताम हो रहा है इन आयात में। किबले की तब्दीली के ऊपर बहुत ज़्यादा बात होने के बाद अब बात आ गई कमा, कमा जैसा के। ये कमा क्या है? इसमें काफ का लफ्ज़ होता है, ये हर्फ है तशबीह का। जैसे हम कहते हैं ना कमासली, काफ मानित के, यानी काफ तशबीह के लिए आता है। अब क्या सके, क्या कह सके, इससे पीछे कोई ना कोई बात थी। तो अल्लाह ताला ने यहाँ कमा के साथ बता दिया कि जिस तरह किबले की तब्दीली का हुक्म दिया, इसी तरह हमने आपको एक और नेमत भी दी। और वो क्या नेमत है? कि हमने आपके अंदर रसूल भेजा। असल में यहाँ हज़रत इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम की मांगी हुई दुआ की कबूलियत की तरफ इशारा है। इस पूरे रुकू में उम्मते मुस्लिमा को बड़ी बड़ी नेमतें जो मिली हैं उसका इजहार है। आपने तो पता नहीं इसको महसूस किया है कि नहीं, लेकिन आप गौर करें, इस एक रुकू में या इस पूरे एक सबक में आपने दो बहुत बड़ी नेमतों का तذکرہ पढ़ा। किबले की तब्दीली, ये बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत ही बात करने लगी हूँ, अल्लाह करे कि सही कह दूँ, यानी जैसे कोई किराए के घर में से निकल कर अपने घर में मूव हो रहा है। कल तक मुसलमान इधर उधर थे, किसी और के किबले की तरफ मुंह कर रहे थे, और अब उनका अपना किबला बन गया। आज आप किराए की जगह पे हैं, कल आप अपनी जगह में हो। फर्क लगेगा आपको? फर्क होता है ना? हाँ, आमीन तो कह दिया करें, पता नहीं कहाँ खोए होते हैं। आप समझ रहे हैं ना, यानी मुसलमानों को एक अपना प्लेटफॉर्म मिल गया, किसी की एक आइडेंटिटी हो गई। कल तक कोई किसी के नाम के साथ जुड़ा हुआ था, आज वो आजादी से अपना काम कर रहा है। एक बहुत बड़ी नेमत थी। दूसरी नेमत कौन सी मिली इन आयात में उम्मत मुस्लिमा को? वजअलनाकुम उम्मतम वसता। ये बहुत बड़ी नेमत जो मिली वो उम्मत वसत बनी, इमामत का मनसब मिल रहा है, इक्तदार में आ गई। यानी मुसलमानों को अल्लाह ताला ने किबला दिया, एक मरकज़ दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया, और साथ ही अब उम्मत की तब्दीली हो रही है। कल तक जहाँ कोई और उम्मत थी वहाँ उम्मत मुस्लिमा आ गई। ये दो नेमतें, अब तीसरी नेमत यहाँ आ रही है कि कमा अरसलना फीकुम रसूलम मिनकुम, हमने तुम्हारे बीच में एक रसूल भेजा। वही बात पीछे जो हो गई उसी की बात यहाँ आ गई कि अब हमने एक काम करने के लिए लीडर आपके पास भेज दिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके बीच में भेजा। उसका तरीका कार क्या है? यतलु अलैकुम आयातिना, आप पर हमारी आयतें पढ़ता है। वहां भी यही बात थी ना, पहले हजरत इब्राहिम और इस्माइल की जो दुआ थी उसमें पहली बात कि वो आयतें पढ़ता है, दूसरी बात युज़क्की व युज़क्कीकुम, और तुमको पाक करता है। यहाँ तरतीब थोड़ी सी बदल रही है। वहाँ क्या थी? तिलावत आयात थी, फिर तालीम किताब और हिकमत थी, फिर तज़किया था। यहाँ तज़किया पहले आ गया, और वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा बाद में आ गया। क्यों? इसका फ़र्क समझना चाहिए हमें, क्योंकि इसमें लफ्ज़ों के फ़र्क से भी बात थोड़ी सी बदल जाती है। आप देखिए कि जो बात इब्राहिम और इस्माइल ने कही थी, यकीनन वो बात दुरुस्त थी, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन आप यहाँ ये कह लें कि उनकी दुआ को अल्लाह ताला ने मज़ीद प्यूरीफाई कर दिया। जिस तरह एक चीज़ शुरू में बनती है तो बड़ी डल सी होती है, या उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं एडजस्ट करने की, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको बेहतरीन कर दिया कि तालीमे किताब और हिकमत से तज़किए के अमल को मुकद्दम कर दिया। क्यों? क्योंकि तज़किया क्या है? नीयत की दुरुस्तगी। और मुफस्सरीन कहते हैं कि अगर नीयत ठीक नहीं है ना, तो किताब की और हिकमत की तालीम भी फ़ायदा नहीं देती, बल्कि गुमराहियों में और इजाफा होता है। तो कुरान और हदीस पढ़ने से पहले अगर इंसान अपनी नीयत को चेक कर ले, तज़किया करेगा, उसकी बुनियाद पे इखलास आएगा, इखलास होगा तो इंसान को उस इल्म से फ़ायदा भी होगा, तरीक़ाकार ठीक होगा। वरना तो आप देखिए कि कोई इंसान पढ़ लिख के जितना मर्जी बड़ा आलिम बन जाए, बाज़ दफ़ा वो शैतान का आलाकार बन जाता है। आज भी दुनिया में जितने आपको बातिल फ़िरके दिखेंगे, आपका क्या ख्याल है कि उनके बानी जो हैं वो कोई बेदीन लोग होंगे? आप उनकी किताबें पढ़ के देखें, उनकी हदीसें रिवायत की हुई जो उन्होंने जमा की हैं देखें, तो आप उनके इल्म यानी इल्म की गवाही देंगे कि बड़े इल्म वाला शख्स है। लेकिन फितने कहाँ उठते हैं कि जहाँ इल्म के साथ तज़किया नहीं होता? दीन अकबरी को देख लें, दीन इलाही को देख लें, इसी तरह आज भी जो नाम मारूफ है मुख्तलिफ अकायद के नाम पे, तो यहाँ नीयत ख़राब हो जाती है तो फिर इंसान को उस काम से फ़ायदा नहीं होता। सूरत आले इमरान और सूरत जुमा में भी ये बात आएगी, और अब आगे जहाँ भी होगा तिलावत आयत के बाद तज़किया, और फिर उसके बाद तालीम किताब और हिकमत होगी। और वयुअल्लिमुकुम मालम तकूनु तालमून कह के तो एक और एहसास दिला दिया गया कि देखो तुम्हें ये वो कुछ सिखा रहा है जो तुम्हें नहीं पता था। कितनी शुक्रगुजारी आनी चाहिए इंसान के दिल में इस बात को सोचकर कि अल्लाह ने अपने नबी के ज़रिए से हमें वो सिखा दिया जो हमें पहले नहीं पता था। दुनिया में अगर कोई बंदा हमें ऐसी चीज़ सिखाए कि जिसको हम पहले ना जानते हों, तो हम हमेशा उसको याद रखते हैं। कभी भी वो काम करेंगे तो हम कहेंगे सबसे पहले इसने ये काम सिखाया था, इसने मुझे पहली दफ़ा रोटी बनानी सिखाई, इसने मुझे पहली दफ़ा लिखना सिखाया, पढ़ना सिखाया। तो क्या हम अपने दिलों में अल्लाह के नबी के लिए ये जगह महसूस करते हैं? और नहीं करते थे तो अब करनी चाहिए कि जो बंदा इंसान को इल्म सिखाए, उसके लिए इंसान के दिल में ये जगह होनी चाहिए। और कहा अब सारी नेमतें, अभी तक जितनी भी नेमतें हुई, इसके शुक्राने में क्या करो? फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, मेरा जिक्र करो, मुझे याद रखो, हर वक्त याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूंगा। और वश्कुरूली, मेरा शुक्र अदा करो और कुफर ना करो। यहाँ देखिए कि फ़ज़कुरूनी कह के अल्लाह ताला ने किस बात को कहाँ जोड़ दिया? एक खाकी इंसान का ताल्लुक अल्लाह ताला ने आसमान वाली ज़ात से जोड़ दिया। बंदा इन अल्लाह को याद करे, उसका फ़र्ज़ है, उसको करना चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला कहता है कि मैं तुम्हें याद करूँगा। जिक्र क्या होता है, इसको देखते हैं, फिर देखेंगे कि बंदा रब को कैसे याद करता है और रब बंदे को कैसे याद करता है। जिक्र का लफ्ज़ होता है भूली हुई बात को याद करना, रिमाइंडर के मानों में, यानी रिमाइंड करो। हम दुनिया में आके जो नेकियां करते हैं, या हम कोई भी अच्छा काम करते हैं, या अल्लाह की तरफ आते हैं, तो दरअसल ये कोई नई बात नहीं होती। हमारी फितरत के अंदर अल्लाह ताला ने जो चीज़ गूंद दी है ना, अलस्तु बिरब्बिकुम की सूरत में, उसी का इजहार होता है। आज अगर कोई एथियस्ट है, वो पलट के आता है अल्लाह की तरफ, तो भी उसका जिक्र ही होगा। क्यों? कि जब माँ के पेट से आया था तो उस वक़्त उसको पता था कि अल्लाह है, उसने पैदा किया, वो सारे कामों को करने वाला है। लेकिन इंसान जब उसको भुला देता है कुछ अरसे के लिए, फिर जब याद आता है, तो वो याद आना जिक्र होता है। और जिक्र तीन तरह से होता है, जिक्र कल्बी दिल के साथ, जुबान के साथ जिक्र लिसानी, और जिक्र बिल आमाल यल जवारे। दिल से जिक्र करना क्या है कि बंदे के दिल में अल्लाह की याद रहे, मोहब्बत आए, उसको महसूस हो वो कोई ज़ात है जिसने मुझे दिया। हर वक्त एक इंसान का दिल अल्लाह की नेमतों के साथ से भरा रहे। जुबान पे जिक्र आना क्या है? अल्लाह की नेमतों का इजहार, मुझे अल्लाह ने बहुत दिया, कभी सुबहान अल्लाह, कभी अल्लाह अकबर, कभी अल्हम्दुलिल्लाह, कभी सुबहान अल्लाह, ये सारी जिक्र की किस्में हैं जो हम जुबान से अदा करते हैं। और अमल के साथ जिक्र क्या है कि इंसान अपने जिस्मानी आज़ा से वो काम करवाए जो काम अल्लाह ने करने का हुक्म दिया। अगर किसी का दिल अल्लाह की मोहब्बत की गवाही दे रहा है, हर वक्त अल्लाह याद रहता है, और जुबान से वो जिक्र नहीं भी कर पाता, वो फिर भी जिक्र की हालत में है। सवाल उठता है कि कोई बंदा जिक्र कर रहा है और दिल में कोई ख्याल नहीं, बस तस्बीह फेर रहा है, सुबहान अल्लाह और सोच कुछ और रहा है, क्या उसको भी कोई अजर मिलेगा? इसके बारे में हजरत अबू उस्मान थे, तो उनसे किसी ने इस बात की शिकायत की कि हम जुबान से तो जिक्र करते हैं लेकिन कल्ब उसकी कोई मिठास महसूस नहीं करता, जैसे एक आदत होती या कुछ, तो क्या हमें इसका सवाब होगा? तो उन्होंने कहा कि इस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करो कि इसने तुम्हारे एक उज्व यानी जुबान को तो अपनी इताअत में लगा रखा है ना, तो कम फायदा हो लेकिन जुबान पे जिक्र होगा तो वक्त आएगा कि वही जिक्र फिर दिल में भी आएगा। फिर इसी तरह देखिए कि आमाल का जिक्र क्या होता है कि इंसान अपने जिस्म के हर उज्व से वो काम करवाए कि जिस काम से अल्लाह ताला राजी हो। हमारे यहाँ मसला क्या है कि लफ्ज़ जिक्र को जिक्र करने के मानों में लेते हैं, हालांकि जिक्र है याद। मसला आप देखिए कि आप किसी का फोन आता है और आप उसे कहते हैं मैं आपको अभी याद कर रही थी, तो क्या आप वाकई उसका तذکرہ भी कर रहे होते थे? हम असल में तذکرے को जिक्र समझते हैं, जैसे आपको तो पता भी नहीं होगा इस वक्त मुझे कौन याद आ रहा है, और मुझे भी नहीं पता होगा आपको कौन याद आ रहा है। तो याद के साथ जिक्र का बड़ा गहरा ताल्लुक है। अल्लाह ताला कहते हैं ना कि फज़कुरूनी, तो इसका ये नहीं मतलब कि हर वक्त तुम बस जिक्र के नाम पे कुछ पढ़ते जाओ, बल्कि मुझे याद रखा करो। हत्ता के मुफस्सरीन कहते हैं कि बंदा मोमिन कभी गुना भी कर रहा होता है उस वक्त भी वो दिल से अल्लाह को याद कर रहा होता है कि अल्लाह ये मैं क्या कर रही हूँ, अल्लाह मैं कहाँ जा रही हूँ, यानी नफ्स के हाथों पे काबू है लेकिन अल्लाह को उस वक्त भी नहीं वो भूलता। तो ज़रूरत है इस बात की कि बंदा अल्लाह को याद करे। एक हदीस कुदसी में आता है अना माहू इज़ा ज़करनी फ़ाइन ज़करनी फ़ी नफ़्सी ज़करतुहू फ़ी नफ़्सी वइन ज़करनी फ़ी मलाइन ज़करतुहू फ़ी मलाइन खैर मिनहुम। अगर बंदा मुझे अपने नफ्स में याद करता है तो मैं उसको अपने नफ्स में याद करता हूँ, सोचिए ज़रा। और अगर बंदा मुझे महफिल में याद करता है तो मैं उससे अच्छी महफिल में उसको याद करता हूँ। अबू उस्मान नाहदी थे, तो उन्होंने कहा कि मैं उस वक़्त को जानता हूँ जब अल्लाह ताला मुझे याद करते हैं, यानी मुझे पता चल जाता है अल्लाह ताला मुझे कब याद कर रहे हैं। तो लोगों ने कहा भाई आपको कैसे पता चल जाता है? तो कहने लगे कि कुरान करीम के वादे के मुताबिक जब कोई बंदा ईमान वाला अल्लाह को याद करता है तो अल्लाह भी उसे याद करते हैं, तो जब मैं जिक्र कर रहा होता हूँ तो मैं समझ जाता हूँ कि इस वक्त अल्लाह भी मुझे याद कर रहे हैं। कभी हमने सोचा इसे? कितनी महफिलें जिक्र की होती हैं और कम ही इस तरह सोचा जाता है। इसी तरह अब अगला सवाल है कि जिक्र बंदा करता है तो क्या बस जुबान का जिक्र है? नहीं, बंदे का अल्लाह को याद करना है कि अल्लाह की इताअत करे, अल्लाह के हुक्मों के साथ याद करो। आयत का अगर आप मानी समझे तो क्या बनता है? तुम मुझे मेरे हुक्मों की इताअत के साथ याद करो और मैं तुम्हें सवाब और मग़फ़रत के साथ याद करूँगा। सईद बिन जुबैर रहमहुल्ला जो हैं वो बहुत ही प्यारी बात लिखते हैं, कहते हैं जिसने अल्लाह ताला के अहकाम की पैरवी ना की उसने अल्लाह को याद नहीं किया, अगरचे जाहर में इसकी नमाज और तस्बीह कितनी भी हो। बात समझ रहे हैं? बंदा रब को कैसे याद करता है? इताअत करके, ओबीडियंसी के साथ, नाफरमानियाँ नहीं करता। और अल्लाह बंदे को कैसे याद करता है? वो उसको अजर देकर, उसको सवाब देकर। इसी तरह एक रिवायत है कि नबी सल्लम ने फरमाया कि जिसने अल्लाह की इताअत की यानी उसके अहकाम हलाल और हराम का इत्तेबा किया उसने अल्लाह को याद किया, अगर जिसकी नफिल नमाज और रोज़ा कम ही क्यों ना हो। اور جس نے اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی اس نے اللہ کو بھلا دیا، اگرچہ بظاہر اس کی نماز، روزہ، تسبیح وغیرہ زیادہ ہی کیوں نہ ہوں۔ اسی طرح ایک ذوالنون مصری ایک بزرگ تھے، کہتے ہیں کہ جو شخص حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے وہ اس کے مقابلے میں ساری چیزوں کو بھول جاتا ہے، یعنی اتنی یاد آ جائے اللہ کی کہ باقی سب کچھ بھول جائے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے ساری چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں اور تمام چیزوں کا عوض اس کو عطا کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انسان کا کوئی عمل اس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دلانے میں ذکر الہی کے برابر نہیں، یعنی جتنا ذکر الہی سے انسان عذاب سے بچتا ہے اتنا کسی اور چیز سے نہیں بچتا۔ تو بات یہ ہے کہ ایک بندہ جب اللہ کو یاد کرے گا تو اللہ اس کو کیوں نہ یاد کرے گا، اور ذکر کا اگلا درجہ جو ہے وہ کیا ہے؟ شکر، وشکرولی، شکر کرو۔ اب شکر وہی ہے جس کو ہم الحمدللہ کہتے ہیں، تو وہ ذکر بن جاتا ہے، اور شکر دل کے گہرے جذبوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ شکر کے بھی تین ہی درجے ہیں، شکر بالقلب، شکر باللسان، اور شکر بالجوارح۔ دل کے ساتھ شکر کرنا، زبان سے شکر کرنا، اور اعضاء کے ساتھ شکر کرنا۔ دابت الشکور اس جانور کو کہتے ہیں جو خوب موٹا تازہ ہو، یعنی اس کی حالت سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا مالک اس کو خوب کھلاتا پلاتا ہے۔ تو بندہ مومن جو خوش رہتا ہے نا، وہ لوگوں کے سامنے ایک قسم کا اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ میرے رب نے مجھے بڑا خوش رکھا ہوا ہے، وہ شکووں سے بھرا ہوا دل نہیں رکھتا کہ بس کیا کہیں، شکر ہے۔ ایسا شکر کرتے ہیں بعض لوگ، ایسے لگتا ہے کہ 100 شکوے بھرے ہوئے ہیں، کوئی آپ کا حال پوچھے تو کیسے جواب دیتے ہیں؟ شکر ہے جس حال میں وہ رکھے، یہ شکر ہے؟ نہیں، ولا تکفرون، میرا کفر نہ کرو، نہ شکری نہ کرو۔ اس پہ آگے جا کے ہم بات کریں گے، بہت جگہ یہ مضمون آئے گا اور بڑا خوبصورت ٹاپک ہے یہ شکر کا۔ اگر آپ یہاں یہی کہہ لیں کہ پورے کا پورا دین ہے ہی شکر، اور آپ کو یاد ہوگا کہ سورۃ فاتحہ میں اس دفعہ ہم نے الحمدللہ رب العالمین میں جو الحمد تھا وہ تعریف سے زیادہ شکر کے معنوں میں کیا تھا۔ اپنے نوٹس جا کے دہرا لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ شکر گزاری سے اور ناشکری سے انسان پہ کیا اثرات ہوتے ہیں۔